परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रेमित्र प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने आशीषों को हम तक लिख भेजते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रभु के वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं उन नए श्रोता मित्रों का स्वागत करता हूं जो पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों रोमियों के पत्र से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि जो मनुष्य शारीरिक रीति से जीवन जीता है वह परमेश्वर से अलग है, अर्थात वह मृत्युमय जीवन जीता है, वह परमेश्वर से दूर रहता है, उसके साथ उसकी कोई सहभागिता नहीं। लेकिन आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नया मनुष्य। अब हम एक नया भाग देखेंगे जो मनुष्य के नए स्वभाव की चर्चा करता है, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच में आप जीवित और सच्चे परमेश्वर है जो सदैव हमसे प्रेम करते हैं, हमारी जरूरतों के मुताबिक हमसे बातचीत करते हैं। आज जब हम आपके वचन का अध्ययन फिर से करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, विशेष करके हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान में हैं, तनाव में हैं। प्रभु जी, आप उनकी मदद करें, अपने वचन के द्वारा उन्हें धैर्य और हिम्मत दें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, वे आपकी रचना है, आपकी सृष्टि है, आप उन्हें बचाना चाहते हैं, आप उन्हें शांति देना चाहते हैं। आज हमारे हर एक भाई बहनों से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों आइए अब हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 14 पद को निकाल लें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या यह बुद्धि की बात दिखाई देती है? जी नहीं, परमेश्वर अपनी भेड़ों को हांकता नहीं है, वह उनकी अगुवाई करता है। हमारा प्रभु जब भेड़ की सुरक्षा एवं संरक्षा की बातें कर रहा है तब उसने स्पष्ट कहा है कि उसकी और परमेश्वर पिता की इच्छा करने के लिए बाध्य नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 27 पद में वह कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जी हाँ, ऐसी भेड़ें सुरक्षित एवं संरक्षित हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हैं और पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। वे उसका शब्द सुनती हैं क्योंकि उनमें नया स्वभाव है और वे उसके पीछे चलती हैं। मेरे प्रियो, मैं एक लंबे समय से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। मुझसे घृणा करते थे और मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे उसकी भेड़ें नहीं थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 18 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। एक बार एक युवा पास्टर मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे हर प्रकार की समस्या है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? उसने कहा, मेरी कलीसिया के पदाधिकारी और संडे स्कूल के शिक्षक। मैंने उससे पूछा कि वह क्या करता है कि वे उसे परेशान कर रहे हैं। उसने कहा, मैं बाइबल की शिक्षा दे रहा हूं और सत्य वचन के आधार पर चलता हूं। मैंने उससे कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करो, आप देखेंगे कि आपकी कलीसियाओं के अधिकांश जन वास्तव में उसकी भेड़ें नहीं है। जी हाँ, उसकी भेड़ उसके पीछे चलेगी, उन्हें चलना होगा क्योंकि वे उसकी हैं। यही तो पौलुस यहाँ पर हमें कह रहा है। आइए हम रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसके 15 पद को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। आप में भय की आत्मा नहीं है कि अपनी आत्मिक दशा पर संदेह करें, अप्रसन्न और निराश हो। इसके विपरीत आप आनंद से पूर्ण हैं क्योंकि आप उसकी संतान हैं। और परमेश्वर का आत्मा आप में उफनता और कहता है, अब्बा पिता। अब अब्बा शब्द सीरियाई भाषा का शब्द है। अनुवादकों ने इसे परमेश्वर का वचन होने के कारण अनुवाद नहीं किया है। यह एक वैतिक शब्द है और इसका अनुवाद है मेरे पिता। हम अधिक वैतिक होने के भय से मेरे पिता शब्द को काम में नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, यह मन की पुकार को व्यक्त करता है, विशेष करके संकट काल में। आइए हम रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 16 पद को पढ़ें। लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब वह अपने कैंसर के ऑपरेशन के लिए पहली बार अस्पताल गया था तब उसने इस पद की बात को सही पाया। उसने कहा कि हिजकिय्याह की तरह उसने दीवार की ओर मुंह किया और पुकारा, हे प्रभु, मैं इस अस्पताल में अनेक बार आया हूँ, मैंने रोगियों के हाथ थपथपाए और उनके साथ प्रार्थना की और उनसे कहा, ओह प्रभु में विश्वास करो, वह आपको पार लगाएगा। प्रभु, मैंने उनसे तो कह दिया, परंतु मैं पहली बार यहाँ पर स्वयं रोगी होकर आया हूँ। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सच है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए इसे सच कर दे। यदि तू मेरा पिता है तो मैं इसे जानना चाहता हूँ। और मेरे मित्रों, उसने इसे सच सिद्ध कर दिया। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा पुकारता है, अब्बा पिता। जी हाँ, यह आप में उफनता है। उस पर विश्वास करना कैसा मधुर है, स्वयं को उसके हाथ में छोड़ दें। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। यदि संतान है, सुनिश्चित करता है परमेश्वर की संतान मसीह के साथ दुख उठाएंगे। मेरे विचार में इसका अनुवाद ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम उसके साथ कष्ट उठाते हैं। मेरे प्रियो, यदि ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कुछ लोग उसे बना देते हैं। मेरे मित्रों, आप उसके लिए कैसा कष्ट उठा रहे हैं? जैसा भी हो, पौलुस स्पष्ट कहता है कि हमें जो कष्ट हो रहे हैं वे बहुत कम है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, महिमा का अनंत प्रभाव जो एक दिन आने वाला है। अनंत युग में हम यही कामना करेंगे कि हमने उसके लिए और कष्ट उठाया होता, क्योंकि इसी प्रकार वह हमें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करता है। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। मेरे मित्रों, हम में अंतरवासी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे नई सृष्टि। रोमियों के अध्ययन में अब एक नया परिदृश्य सामने आता है। विश्वासियों की देही को मुक्ति नहीं मिलेगी, वरन हम देखेंगे कि यह संपूर्ण जगत, जिस पृथ्वी पर आप और मैं वास करते हैं, उसे भी मुक्ति मिलेगी। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। सच तो यह है कि हम इस पुरानी पृथ्वी का नई पृथ्वी के साथ विनिमय कर रहे हैं, एक पूर्ण रूपे नई पृथ्वी जिसमें पाप नहीं होगा, उस पर पाप का श्राप कभी नहीं आएगा। यह एक अद्भुत बात है। किसी ने एक दिन मुझसे कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के प्रायश्चित में चंगाई है। मैं सोचता हूं कि मैंने उसे विस्मित कर दिया जब वह कहा, मैं भी इसे मानता हूं कि प्रायश्चित में चंगाई ही नहीं, एक नई देह भी है। मसीह की प्रायश्चित बलि में एक नई दुनिया भी है, परंतु यह अभी हमारे पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ तो वर्षों से नया संसार बनाने का प्रयास कर रहा है, परंतु निश्चय ही अभी हमारे पास यह नया संसार नहीं है, परंतु मसीह यीशु अपने मुक्ति कार्य द्वारा एक दिन यहां पर संसार लाएगा। उस समय मुझे एक नई देह भी मिलेगी। मेरे मित्रों, मैं इसकी प्रतीक्षा में हूं। मेरे मित्रों, यह देह तो जीर्ण छीन होती जा रही है, और मैं इसका विनिमय नई देह से करना चाहता हूं। वह आने वाली है, और चंगाई मैं कहूंगा कि यह प्रायश्चित बलि में है, परंतु अभी मुझे यह पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 18 पद में आगे लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं, अर्थात पौलुस गणना करता है, जीवन के बही खाते के दोनों पक्ष आय एवं व्यय का लेखा लेता है। इस समय के दुख और क्लेश सब विश्वासियों के लिए है। यह पीढ़ी जो इतिहास में अन्य सब की तुलना में अधिक सुविधाओं का लाभ उठा रही है, इस बात पर मृकुटी तान लेती है, परंतु यह सच है कि आज के विश्वासी कष्टों से बच नहीं सकते। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। मेरे प्रियो, मैं अपने शब्दों में इसका अनुवाद करता हूं, सृष्टि गर्दन ऊंची करके परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। संसार विकासवाद के सूर्यवाद की प्रतीक्षा में नहीं है, जो कभी नहीं होगा, परंतु सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है। आज सृष्टि पर्दा पड़ी एक मूर्ति की नाई है। जब परमेश्वर के पुत्र इस देह का बाहरी आवरण उतार देंगे, तब सृष्टि भी अनावृत हो जाएगी। वह दिन कैसा महान दिन होगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। जी हाँ, सृष्टि व्यर्थता के अधीन। व्यर्थता का अर्थ है विफलता, क्षय, नाशवान वस्तु। अपनी इच्छा से नहीं, अर्थात किसी के द्वारा आशा के अधीन। राजा सुलेमान, जो एक निराशवादी था, उसने लिखा सबोपदेशक 1 अध्याय उसके 7 पद में, सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। आवृत्ति का एक उबाऊ चक्र चलता रहता है। नदियां समुद्र में गिरती हैं और परमेश्वर के पास एक पानी का पंप है जो पानी को समुद्र से फिर निकाल देता है और उसका यातायात तंत्र हवा बादलों की सूखी भूमि पर फैला देती है और वर्षा हो जाती है जो नदियों में पानी भर देती है और नदियां समुद्र में पानी ले आती हैं। प्रकृति में एक स्वरता है जिसे आप हर जगह देख सकते हैं। प्रकृति प्रतिज्ञा के प्रकटीकरण अनावरण की प्रतीक्षा कर रही है। सृष्टि व्यर्थता के अधीन की गई थी क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा बनाया था। मनुष्य पर पाप का श्राप आया क्योंकि यह आदम की अवज्ञा का फल था, परंतु संसार भी श्रापित हुआ। याद रखिए कि परमेश्वर ने आदम से कहा, उत्पत्ति के पुस्तक 3:18-19 पद में, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मित्रों, मैंने बहुत सारे क्षेत्रों में भ्रमण किया है और मैंने बहुत सारे जंगली क्षेत्रों को भी देखा है और मैंने देखा है कि वहां पर बहुत सारे कटीली झाड़ियां हैं। यदि आप उस पर चलेंगे तो यहां तक कि आपके जूतों में भी ये कांटे पार हो जाएंगे। और ऐसे ही बातों को हम यहां पर पाते हैं जो आदम के लिए कहा गया। आज मनुष्य पसीना बहा करके खेती करता है तब खाता है, लेकिन उस स्वर्ग लोक में भी कांटे हैं, सृष्टि श्रापित है। रोमियों की पत्री 8:21 पद में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। जी हाँ, मनुष्य के पास मरणशील देह है। किसी ने कहा है, वह जिस क्षण हमें जीवन देता है उसी क्षण उसे लेना आरंभ कर देता है। प्रकृति में मृत्यु एवं क्षय है। एक अति रमणीय जंगल में जाए तो आप वहां भी एक मृतक वृक्ष को देखेंगे जो नष्ट हो गया है और सड़ रहा है। यह प्रकृति है। आपको मरे हुए पशुओं की दुर्गंध भी आएगी। मेरे प्रियो, हम रोमियो 8:22 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ब्राउनिंग कवि ने लिखा है, जिसका अनुवाद है, परमेश्वर स्वर्ग में है, संसार के साथ सब ठीक है। विश्वासी जानते हैं कि यह सच नहीं है। यह तो स्वीकार्य है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, परंतु संसार के साथ सब ठीक है, यह सच नहीं है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन अधिक सच्य है। यूएल नबी की पुस्तक 1:18 में लिखा है, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विफल हैं क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। कुछ ने हमारा ध्यान उस सत्य की ओर आकर्षित किया कि प्रकृति निम्न स्तर से जाती है। पर्वतों पर चीड़ के वृक्ष में हवा का चलना और किसी निर्जन समुद्री तट पर फेन उठना, दोनों का एक ही पुकार है। वृक्षों का संगीत रिकॉर्ड किया गया है, वह विषादपूर्ण है। किसी भयभीत पशु की चीत्कार या किसी चिड़िया का भयभीत स्वर रात की हवा को भेदता है और खून जमा देता है। निश्चय ही प्रकृति धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता के श्रवणशील गवाही देती है। इस विषय में गाटेट ने शेलिंग का संदर्भ दिया। प्रकृति अपने दुख भरी आलाप में उस वधु के सदृश है जो विवाह के लिए तैयार होते ही वर को मृतक देखती है। वह सजी सजाई खड़ी है, परंतु उसकी आंखों में आंसू है। अतः यह सच ही है कि प्रकृति कराहती है। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे देखें। नई देह, रोमियों की पत्री 8:23 पद में लिखा हुआ है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। प्रकृति ही नहीं कहरती, विश्वासी भी प्रकृति के साथ सामंजस्य में हैं। यह पद उन विश्वासियों के लिए निराशा का कारण है जो कहते हैं कि विश्वासियों को सदा मुस्कुराते रहना है। मेरे मित्रों, अपनी परेशानियों में भी मुस्कुराते रहें। यह नारा केवल रोटरी क्लब के लिए है, विश्वासी रीति के लिए नहीं। हम अपनी देह में क्या कराहते हैं? कुछ वर्ष पूर्व जब मैं अधेड़ अवस्था में प्रवेश कर रहा था तो मैं सीढ़ियों से उतरता हुआ कराह रहा था, कारण मेरे घुटनों में दर्द हो रही थी। मेरी पत्नी ने कहा, मुझे कराहना नहीं चाहिए। मैंने उसे उत्तर दिया कि कराहना धर्मशास्त्र पर आधारित है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:2 में पौलुस कहता है, इसमें तो कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। भजनकार भी कहता है भजन संहिता 6:6 में, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हमारे प्रभु यीशु ने भी रोने का काम किया था, जबकि मेरे विचार में वह एक हंसमुख मनुष्य था। उसके जीवन में ऐसे समय भी थे जब वह रोया था। इस देह में हम कराहते हैं। रोमियों की पत्री 8:24 में पढ़ते हैं, आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई नहीं देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यह क्रूस पर यीशु के कार्य और उसके हमारे विश्वास के संदर्भ में है, परंतु यही अंत नहीं है। हमारे लिए मुक्ति की देह है जो भविष्य में प्रकट होने वाली है। रोमियों की पत्री 8:25 में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरे से उसकी बाट जोहते भी रहें। जी हाँ, विश्वास, आशा और प्रेम विश्वासी के जीवन के मुख्य गुण हैं। यदि सब कुछ पूरा हो जाए तो फिर आशा कहाँ होगी? एक दिन आशा परिपूर्णता के कारण विलोप हो जाएगी। वरन सच तो यह है कि आशा और विश्वास दोनों ही उस महिमा में विलोप हो जाएंगे जो हम में प्रकट होने वाली है। केवल प्रेम सदा बना रहेगा। रोमियों की पत्री 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। वर्षों पुरानी बात है, एक प्रचारक प्रवचन दे रहे थे और एक जोशीला विश्वासी बार बार आमीन कह रहा था और विघ्न डाल रहा था। इस पर प्रचारक ने अप्रसन्न होकर कहा, मेरे भाई, धर्मशास्त्र की पवित्र आत्मा कराहते हुए हमारे लिए विनती करता है जिसकी वाणी सुनी नहीं जा सकती। अतः यदि आप में परमेश्वर का आत्मा है तो आवाज न करें। हम प्रार्थना करना भी नहीं जानते थे, परंतु पवित्र आत्मा अंदर से प्रार्थना करता है जो सुनी नहीं जा सकती है। क्या आप परमेश्वर के निकट ऐसी स्थिति में आए हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या कहें? आपको जो करना है वह केवल यह है कि कहें, अब्बा। आप कुछ मांग नहीं सकते क्योंकि आप नहीं जानते कि क्या मांगे। ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यह कैसी ही अद्भुत बात है। रोमियों की पत्री 8:27 में हम पढ़ते हैं, और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जी हाँ, अब यदि मैं प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के निकट आता हूँ और कहता हूँ, हे परमेश्वर, यह काम ऐसे कर, मैं प्रायः ऐसे ही करता हूँ और उत्तर नहीं पाता हूँ। परंतु कभी कभी प्रभु के पास जाकर यह कहना, प्रभु, मैं नहीं जानता कि क्या मांगू, मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ, परंतु मैं तेरे संतान होने के कारण तेरे पास आता हूँ और चाहता हूँ कि तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर का काम या परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगी। और यह कैसी ही अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नया उद्देश्य। अब हम परमेश्वर के नए उद्देश्य को देखेंगे। यदि रोमियों की पत्री बाइबल की महानतम पुस्तक है तो 8 उसकी पराकाष्ठा है, तो 28 उसका शिखर है। परमेश्वर का उद्देश्य पापियों के उद्धार को निश्चित करता है और अगले 3 पर उद्धार की उत्तरोत्तर प्रक्रिया प्रकट करते हैं। यह विलियम संडे का कहना है। रोमियों की पत्री 8:28 में हम पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, मैं इस पद का अर्थानुवाद इस प्रकार करता हूँ, परंतु हम ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जानते हैं कि वे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात जो उसके उद्देश्य के अधीन बुलाए गए हैं। स्वर्गीय डॉक्टर रूबिन ए टोरी परमेश्वर के महाभक्त थे। उन्हें लोग गलत समझते थे और बुरा भला कहते थे। वह इस पद का अर्थ भली भांति समझते थे। वे इसे शांत मन का तकिया कहते थे। हम इसे बहुतों ने अपने सिर इस पद अर्थात 8:28 पर रखकर विश्राम किया है। हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि कराहती है, परंतु हम यह भी जानते हैं कि सब बातें मिलकर कराहना भी भलाई उत्पन्न करता है। मित्रों, हम जानते हैं रोमियो के पत्री में 5 यह काम में लिया गया है और जानना 13 काम में आया है। यह विश्वासियों के सामान्य ज्ञान से संबोधित है, अर्थात वह जो पवित्र आत्मा वास्तविक बनाता है, जैसे 1 कुरिन्थियों के पत्री 8:1 में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। परंतु हमारा ज्ञान वह ज्ञान है जो पवित्र आत्मा हमारे मन में जागृत करता है। चार्ल्स स्पर्जन कहा करते थे, यह आवश्यक नहीं कि कोई मुझे शहद का स्वाद बताए कि वह मीठा है, मैं जानता हूं। मेरे मित्रों, मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मुझे इस पर विवाद नहीं करना है क्योंकि मैं इसे जानता हूं। आप कैसे जानेंगे? जब तक आपने इसके स्वाद को नहीं चखा है, आप इसे नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम इसे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए भी आवश्यक है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम के स्वाद को चख लें, ताकि हम इस बात को जान सकें कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप किस प्रकार की स्थिति में हैं, लेकिन इस बात को जान लें कि आज परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करना चाहता है। वह आपके जीवन में शांति और आनंद को देना चाहता है। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आशीषों को प्राप्त किया है। हमें खत लिखें, अपनी गवाहियों को बताएं, ताकि हम भी आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? तेरे लिए मैंने जान दी, लहू बहा दिया कि तुझको जीवन मिले, कि तुझको जीवन मिले। दूर दूर क्यों, लौ